Thank you. महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और परीक्षित को भूरे भूरे धन्यवाद दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। सुख गोस्वामी बात कर रहे हैं, जब है महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे तो महाराज परीक्षित के बगल में सुख जी बैठे थे। वही सुख जी उस कथा को महिमसा राय में कह रहे हैं। प्रधान श्रोता है सौनमती, जो भृगुवंश में जन्म लिए उसे संबोधन करते हैं सुख गोस्वामी एवं विषम्य। इस प्रकार सुनकर इस प्रकार जो गौ कथा हुई थी ये प्रश्न था भगवान कृष्ण के विषय में। भगवान कृष्ण व्रत में क्या लीला किए, मथुरा में क्या किए और द्वारावती में क्या किए, द्वारका में क्या किए, ये सब लीलाएं हमको आप सुनाइए क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। तो इस साधु प्रश्न को साधु वादन समीचीन प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और महाराज परीक्षित को धन्यवाद दिए। तो धन्यवाद के श्लोक इसके बाद आएंगे। धन्यवाद दिए को कहा गया प्रत्यक्ष प्रति अर्च। महाराज परीक्षित की बहुत प्रशंसा किए और कृष्ण चरित्र कहना प्रारंभ किए। व्याहतम का बोलना और आर्भतम ने आरंभ किए, बोलना आरंभ किए। सुखदेव गोस्वामी के विषय में सुख गोस्वामी कह रहे हैं भागवत प्रधान समस्त भक्तों में सुखदेव गोस्वामी श्रेष्ठ है। भागवतम प्रधान का अर्थ है कि जिनकी दृष्टि में श्रीमद् भागवतम शास्त्र ही सबसे श्रेष्ठ है, आदरणीय है और समस्त भक्तों में जो शिरोमणि है वे हैं भागवत प्रधान। तो भक्तों में शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी कृष्ण चरित पर प्रवचन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस पर विशेष जोर दिए हैं कि यह कृष्ण चरित्र कलकर्म सदम कलयुग के समस्त पापों को, दुखों को और उसके कारण होने वाले समस्त कष्टों को दूर करने वाला है। कलयुग के भी दोष को यह हर लेता है, खास कलयुग के हर दोष को। तो फिर कलयुग में जन्म लेने वाले लोगों के पाप को हर ले कौन आश्चर्य होगा। तो हम लोग इस कलयुग में जन्म लिए हैं, कलर दोष में देगा जन्म। यह कलयुग समस्त प्रकार के दोषों का निधि है। जैसे समुद्र में जल ही जल भरा रहता है वैसे कलयुग में केवल दोष ही दोष है, जल निधे राज ये दोष निधि है। लेकिन इस युग की विशेषता है, एक महान गुण है, अस्ति एक महान गुण है। वह क्या गुण है? कलयुग में कृष्ण के कीर्तन से व्यक्ति समस्त पाप राशि को ध्वस्त कर देता है और परम भगवान के धाम जाता है। पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह दुख की बात है, इस संसार में बहुत योगी सन्यासी बहुत भ्रष्ट लोग हैं जो कृष्ण कथा पढ़ते नहीं है, प्रवचन के नाम पर प्रपंचन करते हैं, वो बहुत प्रकार की बात बोलते हैं और भगवान की कथा को प्रस्तुत नहीं करते। यह कृष्ण धर्मामृत संघ है, सारे संसार में कृष्ण की के क्रियाकलापों के विषय में जानकारी देता है सब जगह और सभी भाषाओं में। भगवान कृष्ण के संदेश को, भगवत गीता को बोलते हैं और भगवान के चरित्र को। कलिकल्प साधना बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कलयुग के कर्मस, कर्मस का अर्थ पाप और कष्ट। सब प्रकार के कष्ट को दूर कर देगा। केवल जरूरत है कि कृष्ण के नाम, कृष्ण के उपदेश, भगवद गीता और कृष्ण के चरित्र श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया जाए। भगवान ने जो किया है उनको बार बार लोगों को सुनाया जाए। वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में भगवान हमेशा कर्म करते रहे और वास्तविक यह बात है कि हम लोग तो सुनते ही रहते हैं। रोज रोज 24 घंटा कुछ न कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, जैसे न्यूज पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें कचरा के अलावा और क्या है। और टीवी सीरियल में भी बहुत गंदी चीजें हैं, केवल जीवन को नष्ट कर रहे। तो कलयुग का तो ऐसे ही दोष बढ़ा हुआ है कि ऊपर से सब व्यवस्था से और कष्ट बढ़ गया है, बहुत कष्ट है लोगों को। और इस समय मानव समाज चाहता है कि लोगों को सुखी करे, सुखी करे, लेकिन सुखी करने का उपाय गलत कर रहा है। दुख बढ़ाने का काम करता है और कहता है कि अब सुखी करें। और कुछ लोग तो यहाँ पे कहते हैं बस बस अब सत्युग आने वाला है, अब स्वागत की तैयारी कीजिए। ऐसे झूठा सब प्रचार। इस कलयुग के दोषों को समाप्त करना है तो कृष्ण चरित्र, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
सुखदेव गोस्वामी ने कलयुग के कष्टों को नष्ट करने के लिए कृष्ण चरित्र को कहना प्रारंभ किया। कृष्ण परमाकर्षक, परम सुंदर हैं, उनकी लीलाएं परम आकर्षक हैं। तो ऐसे कृष्ण की लीलाओं को कहना प्रारंभ किया। सुखदेव गोस्वामी भागवत प्रधान है, भगवान के भक्तों में प्रधान श्रेष्ठतम है। उस महान सभा में भगवान की लीलाओं को कहना प्रारंभ किए। यद्यपि उस सभा में बड़े बड़े लोग आए थे, स्वयं भगवान वेदव्यास देव भागवत की रचना करने वाले और उनके भी गुरु महाराज नारद जी भी आए थे। नारद जी बैठे थे, भगवान परशुराम जी थे और प्राय सभी ऋषि भृगु अंगिरा वशिष्ठ, इन सब बड़े बड़े लोग बैठे थे। और महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि जो सर्वथा निर्माण है उसको क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको भी बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी इस पर विचार करके प्रथम श्लोक में कहते हैं, बरिया में सुखदेव प्रश्न कृतज्ञ, हे महाराज आपका यह प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, वास्तव में यह लोक हित के लिए है, जगत का कल्याण इसी से होगा। वही कृष्ण चरित्र श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया गया है। इनके प्रश्न को सुनती साधुवाद कर साधुवाद मान तो बात बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर प्रश्न। तो इससे बड़ा सुंदर प्रश्न क्या हो सकता है? भगवान कृष्ण ने ब्रज में क्या किया, मथुरा में क्या किया, द्वारका में क्या किया, इससे अधिक सुंदर प्रश्न दूसरा नहीं हो सकता। यह है साधु बात, यह समीचीन प्रश्न। तो हे सौनक जी संबोधन है, आप भृगु मुनि के पावन वंश में जन्म लिए हैं और भागवत सुनने में आपकी इतनी रुचि है, बहुत धन्यवाद। शुद्ध गोस्वामी धन्यवाद। भृगु महर्षि बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनके पदाघात को भगवान ने सहन किया था। भृगु जी ने भगवान की छाती में लात मार दिया तो भगवान चरण को सहलाने लगे। उस भृगु मुनि के वंश में सौनक जी का जन्म हुआ। सुखदेव गोस्वामी बोले, धन्यवाद दे रहे हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि सत्तम वासुदेव कथायां ते चर्चाता नैष्ठिकी रति। महाराज परीक्षित को संबोधन करते हैं, कहते हैं ये राजर्षियों में श्रेष्ठतम राजर्षि सप्तम। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को संबोधन किया मुनि सप्तम, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ, और सुखदेव ने संबोधन किए परीक्षित को ये राजाओं में सबसे श्रेष्ठ। बहुत से राजर्षि जैसे भरत महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र और पुलवा महाराज, बहुत से राजा हुए जैसे, और सूर्य वंश में जम्बरीश महाराज विचारे, पर समस्त राजाओं में सबसे श्रेष्ठतम है महाराज परीक्षित। तो सम्यक व्यवस्था बुद्धि, महाराज आपकी बुद्धि बिल्कुल उचित निर्णय कर चुकी है। महाराज परीक्षित ब्राह्मण के श्राप से 7 दिन में मरने वाले, तो मरने से पहले वे क्या कमाई करना चाहते हैं, जीवन की सफलता किसमें है, वे साफ कहते हैं बस कृष्ण कथा, भगवान क्या क्या किए इसको मैं सुनना चाहता हूं, ये लालसा है। तो यही बुद्धि का निश्चय है। बुद्धि का काम है निश्चय करना, व्यवसाय व्यवसाय आत्मा का बुद्धि लेके है गुरु नंदन। गीता में भगवान कहते हैं व्यवसाय का बुद्धि एक बुद्धि है, बहुत शाखा युक्त बुद्धि और व्यवसाय ना, और जिनका निर्णय बिल्कुल ठोस नहीं है उनकी तो अनेक बुद्धि होती है, कभी यह करना कभी वह करना, लेकिन इस निश्चय पर कि कृष्ण कथा ही सब कुछ है, बस यही हमें सुनना है, यही बोलना है। यह सम्यक निश्चय बुद्धि का, तो उस भरी सभा में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं धन्यवाद है, आपकी सम्यक बुद्धि है, सम्यक दृष्टा बुद्धि, बहुत अच्छा निर्णय किया है आपने, वास्तव में आपकी बुद्धि बहुत सुंदर है, सम्यक निश्चय है आपकी बुद्धि का। वासुदेव कथाया में जाता नष्ट की रहते, कृष्ण कथा में आपकी निष्ठा प्राप्त बुद्धि है, नैष्ठिकी मति जाता नैष्ठिकी मति, जो बुद्धि चलायमान ना हो सके उस बुद्धि को निष्ठा प्राप्त बुद्धि कहते हैं। नी का अर्थ है वितरण, स्थ का अर्थ है टिक जाना, निष्ठा तो नैष्ठिक। इस प्रकार से अचल मुक्ति है भगवान कृष्ण ने, भगवान कृष्ण की कथा में कि 7 दिन के बाद राजर्षि होते हैं, त्यागना है, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं, परिवार छूटेगा, देह छूटेगा, समाज छूटेगा, उसकी कोई चिंता नहीं, चिंता केवल यही है कि हमें कृष्ण कथा सुनने को मिले, भगवान कृष्ण का चिंतन होता है। वे राजा थे, चाहते तो बहुत प्रबंध कर सकते थे, कुछ अलक्षित स्थान पर चले जाए जहां तक्षक न पहुंच सके, और उपाय विष दबने का क्या क्या उपाय कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किए, पुत्र को राज दे करके और चल दिए गंगा जी के तट पर बैठे। राज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, भोजन पानी सब, लेकिन भगवान के बारे में सुनने को मिले, सुनने को मिले, इसकी लालसा थी, इसलिए इनकी बुद्धि परम प्रशंसनीय है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि स्तव राजर्षि सप्तमा वासुदेव कथाएं तो जाता नैष्ठ की रहती है। वासुदेव की कथा में आपकी अचल मति है, धन्यवाद। और वास्तव में आप सबको हमको प्रश्न के द्वारा पवित्र कर रहे हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांश त्रिन गुना वक्तारम प्रक्षतम श्रोते तत्पाद सर्वम यथा, जैसे गंगा जी ऊपर के लोगों को विविध लोगों में रहने वाले देवताओं को और मध्य में मनुष्यों को और पाताल में भी रहने वाले सभी जीवों को पावन करती हैं, या भगवान शालिग्राम का चरणामृत जैसे जो सींचेगा सींचता है छिड़कता है वो भी पवित्र होता है, और जिस पर डालना चाहता है वो सिंचमान वो भी पवित्र होता है, और आसपास रहने वाला व्यक्ति भी चरणामृत पा करके पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार कृष्ण के विषय में कोई प्रश्न करता है तो प्रश्न करने वाले को पवित्र करता ही है, वक्ता को भी जो उत्तर देगा उसको पवित्र करता है, और इस प्रश्न और उत्तर को सुनने वाले सब लोग पवित्र होते हैं। पुरुषां स्त्री तीन प्रकार के पुरुषों को सुनाती है पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। भगवान के विषय में किया गया प्रश्न प्रश्नकर्ता को उत्तरदाता को और श्रोताओं को सबको पवित्र कर देता है, और इसके विपरीत है भगवान के अलावा और बात खींचने वाला गलत करता ही है वो सुनने वाले और उत्तर देने वाले सबको भ्रष्ट कर देता है। तो कृष्ण के विषय में किए गए प्रश्न की ये महिमा है। वासुदेव कथा प्रश्न श्री कृष्ण के कथा के विषय में किया गया प्रश्न पुरुषां स्त्री बिना तीन पुरुषां तीन प्रकार के लोगों को पवित्र कर देता है, सबको पवित्र कर देता है। तो आप अपने प्रश्न से ही सबको पवित्र कर रहे हैं। पुनहाती का अर्थ है पावन कर देना, तो जो भी अशुद्धि है कृष्ण से विमुखता सब हर लेते हैं, इस प्रकार जीव पावन होता है। इतना कह करके धन्यवाद देकर के सुखदेव गोस्वामी अगर भगवान के अवतार के कारण को कह रहे हैं, भगवान अपने परम धाम से गोलोक नामक दिव्य धाम से इस प्राकृत जगत में क्यों आए इसको कह रहे हैं। भूमि देवता निर्व्याज दैत्यानिक सतायत आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मानं शरणं जयो। भूमि या भूदेवी दैत्यों के भार से बहुत पीड़ित थी, आक्रांत था, यद्यपि द्विती के वंश में जन्म नहीं लिए थे असुर लोग समय, लेकिन कर्म सब दैत्य का था, और नाम क्या था रघुवीर राजा, राजा के रूप में दैत्य भर गए थे उस समय भगवान के अवतार के समय जन्म से पहले कि पृथ्वी खटाखच दैत्यों से भर गए, उनका नाम था क्षत्रिय राजा। राजा नाम मात्र के थे, वास्तव में दैत्य थे, असुर थे, और बहुत बड़ी बड़ी सेना इकट्ठी करते थे सब जगह, और सेना लेकर के एक दूसरे से लड़ते थे, उसमें जनता का बहुत बड़ा नाश होता था। बहुत बड़ी बड़ी सेना मधुराचार करते थे। यह पृथ्वी के लिए बहुत भारी बोझ हो गया। पृथ्वी एक देवी है, भगवान की प्रिया भू देवी। इतना बड़ा शरीर है पृथ्वी का, जैसे हम लोग छोटे से जीव हैं, लेकिन इतना बड़ा शरीर मिला है। तो इसी तरह भू देवी को, माता पृथ्वी को इतना बड़ा शरीर मिला है। तो पाप के बोझ को पृथ्वी नहीं सह पाई। ऐसा लगता था कि अब गिरेगी और सतल चली जाएगी, उसे बहुत कष्ट हो रहा था। पाप का भार बहुत बड़ा भार है, पृथ्वी सह नहीं पाई। आक्रांत आक्रांता हो गई, जैसे किसी मनुष्य पर बहुत बड़ा भार लाद दिया जाए तो उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, पीठ से झुक जाएगी, पीठ झुक जाएगी, वह चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा। ये पृथ्वी की दशा थी। यह माता पृथ्वी समस्त जीवों को जन्म देने वाली, सबका पालन करने वाली है, लेकिन जब इसी की हालत खराब हो गई तो कैसे पालन कर सकती है। जैसे कोई स्त्री अगर स्वयं बीमार हो जाए तो बच्चे को कैसे पालेगी, अपने बच्चे को, गर्भ में रहने वाले बच्चे को या गोद में रहने वाले बच्चे को या भी लोग कैसे पाल पाएगी। ये हालत इस पृथ्वी की हो गई। जितने जीव हैं सब पृथ्वी के पुत्र हैं। पेड़ पौधे, कीट पतंग, पक्षी आदि सब, जलचर, मनुष्य सब पृथ्वी से जन्म लिए हैं और पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी का खाते हैं। पृथ्वी समर्थ है क्योंकि यह भगवान की पत्नी है, इसलिए सबका पालन करने में समर्थ है। परंतु अधिक भार से आक्रांत हो जाने के कारण यह असमर्थ हो गए। गर्भ में रहने वाले, घमंड में रहने वाले राजाओं के अत्याचार से यह आक्रांत हो गए। अब तब इस विश्व के सबसे बड़े अधिकारी ब्रह्मा जी के पास हो गए। गौर भूत्वा अश्रुमुखी कृमंति करुणां देव। पृथ्वी माता गाय का रूप बनाई, गाय का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी के शरण में गई, आश्रय दी। बहुत दुखी थी गाय, गौ रूप धारणी पृथ्वी बहुत दुखी थी, खिन्ना मन बहुत क्लेश में था और करुण क्रंदन थी, बहुत थर थर कांप रही थी, कांप रही थी, रंधा रही थी, रो रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी। ब्रह्मा जी के पास जा करके अपने दुख को सुनाया। ब्रह्मा जी उस समय अपना ऑफिस में थे, सुमेरु पर्वत के ऊपर सातकुंभी नगरी है, वहां पर रहे थे, ब्रह्म लोक में नहीं गए। सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी का कार्यालय है, ऑफिस है, वहां गए और जा करके अपना दुख सुनाया। गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणां देव। उपस्थितं तस्मै व्यसनम स्वर्ण अपना सारा व्यसन दुख ब्रह्मा जी को सुनाने लगे कि हमारे देह पर हमारे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, पूर्व जन्म में क्या क्या सुनाया उसमें एक दो बात में सुनाता है। पूर्व जन्म में जो कर्णवी था वो इस जन्म में कंस वध करके बहुत बड़ा पाप कर रहा है, उन पाप के भार को मैं अब सह नहीं पाऊंगी, इस प्रकार से पृथ्वी ने कह कह करके सुनाया। उसने कंस का नाम लिया, फिर और राजाओं का नाम। तो ब्रह्मा जी सब काम छोड़कर के ध्यान से सुनने लगे। ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं, तो वे गौ धरणी पृथ्वी के दुख को ध्यान से सुनने लगे। उद्धार जब वचस तस्या ब्रह्मा जी उसके वचन को ध्यान से सुने, ब्रह्मा तदुप धार जाता सदेव तया सह जगाना सत्य नयम तीनम छीन पड़ दे। ब्रह्मा जी सबसे बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, सारा प्राकृत जगत को वही संभालते हैं। तो ब्रह्मा जी ध्यान दिए, किसी दुखी व्यक्ति के दुख पर ध्यान देना चाहिए। बड़ा हुशर है तो एक रुपये में कोई कुछ भी कहे वाले बस चुपचाप रह जाए। ब्रह्मा जी ध्यान से सुने कैसे रो रही थी और क्या दुख था उसको। ब्रह्मा जी सुने और सुन करके ठीक है, उसके बाद ठीक है तुम यहाँ आराम से रुको। और समस्त देवताओं को फोन किए, बुलाए, समस्त बड़े बड़े देवताओं को, इंद्र को, चंद्र को, सूर्य को, सब देवताओं को बुलाए और शिव जी को बुलाए। लोग आए ही थे पहले से, तो भगवान शिव को त्रिनयन कहते हैं। त्रिनयन तीन नेत्र हैं, एक नेत्र हमेशा बंद रखते हैं और केवल प्रलय काल में खोलते हैं, सारे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करने के लिए खोलते हैं। एक बार वे टाइमली खोल दिए थे, कामदेव को जला कर राख कर दिए। बड़ा खतरनाक दृष्टि है शिव जी की, तीसरी दृष्टि बंद रखते हैं, भगवान के ध्यान में रखते रहते हैं, जब प्रलय का समय आता है तब उसको खोलते हैं। तो त्रिनयन को साथ में लिए ब्रह्मा जी शिव जी को और देवताओं को और प्रयास और उस गाय को भी पृथ्वी को। ठीक है चलो, सबको कहे कि चलिए अब चले भगवान की भाव। जगाना सत्य नाम तीरम छिर पड़ गए, शेर समुद्र के तट पर गए। सुमेरु पर्वत से छिर समुद्र के तीर पर गए। पृथ्वी के दुख को मिटाने के लिए अपनी कोई शक्ति नहीं थी, तो भगवान के पास गए निवेदन करने के लिए। पयो निधे तीरम, तीरम शिव पयो निधे, शिव समुद्र के तट पर गए जहां भगवान रहते हैं। चिराग देसाई। इस विश्व के पालन का उत्तरदायित्व भगवान पर है, भगवान छिदोदक साई वही पालन करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी वह भगवान संबोधन करते हैं। जो अपने शक्ति नहीं चली तो अपने से उच्च अधिकारी भगवान के पास गए और सभी देवता गए, शिव भी गए और पृथ्वी। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी जब भगवान से कहना चाहते थे, तो भगवान तो सब जगह है और सर्वज्ञ है, तो कोई भी प्रार्थना करना हो तो कहीं भी सुन लेंगे, तो भगवान के घर में जाने की क्या जरूरत है। भागवत के टीकाकार प्रश्न उठाए हैं, लोके व्यापक एव किम, लोके व्यापक एव किम सत्यम तथा पिष्ट। ठीक है, भगवान लोक में सर्वत्र व्याप्त है, सबके हृदय में है, सभी स्थान पर है और सर्वज्ञ है। फिर भी जब कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा कोई मनोरथ पूरा हो, तो उसके लिए यही विधि है कि भगवान के मंदिर में जाकर के, भगवान के घर में जाकर के और भगवान से निवेदन करे। पृथ्वी का बहुत बड़ा भार बढ़ गया है, बहुत दुख है, इसको कहना है तो ब्रह्मा जी ये विधि अपना रहे हैं। यही विधि है कि भगवान के घर में जाकर के कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा ब्रह्मा जी फोन कर देते कि हेलो आप जल्दी और काम लीजिए, यहाँ बहुत दुख है, ऐसे काम नहीं होता। तो क्या कारण था कि ब्रह्मा जी सर्वज्ञ होकर के भी जानते हैं कि भगवान सब जगह है, सब कुछ सुन लेते हैं, तो अपने स्थान पर ही वे भक्ति क्यों नहीं किए, भगवान के घर जाने की क्या जरूरत पड़ी। यही सिद्धांत है। ठीक है, भगवान सब जगह है और सर्वज्ञ है, लेकिन फिर भी तथा तिष्ठ मनोरथ की सिद्धि के लिए भगवान के पास जाना चाहिए, उनके घर में जाना चाहिए। यह विधि है, यह सत्य मार्ग है। इस सुंदर विधि को ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं, क्षीर समुद्र के तट पर गए हैं, सुमेरु पर्वत से अपने ऑफिस से क्षीर समुद्र के तट पर गए हैं, अपने स्थान पर ही भक्ति नहीं करने लगे। तो ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं सबको, सबसे बड़े आचार्य हैं कि भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। यह नहीं सोचना कि भगवान तो सब जगह है, निराकार है, सब जगह है, इसलिए अपने ऑफिस में भी भक्ति हो सकती है, अपने घर में भी, कहीं भी। जैसे आजकल उपचार करते हैं कि भगवान तो सब जगह है, ये सत्य है, भगवान सब जगह है, लेकिन सब जगह मनोरथ की सिद्धि नहीं हो पाती है। भगवान के पास जाना चाहिए। ऑफिस का माहौल दूसरा होता है, घर का वातावरण दूसरा होता है, मंदिर का वातावरण दूसरा होता है। घर में अनेक प्रकार की मोहमाया रहती है, बच्चे रहते हैं, पत्नी रहती है, परिवार के कई लोग, तो उनकी योग क्षेम की चिंता रहती है, वहां जब पढ़ सकता है लेकिन फिर भी कोई एकाग्रता आ नहीं पाती है। एकाग्रता लाने के लिए भगवान से संबंध जोड़ने के लिए आवश्यक भगवान के घर में आना चाहिए, भगवान के धाम में आना चाहिए, भगवान के मंदिर में निश्चिंत मन से भगवान का स्मरण किया जाता है। कोई सोचे कि हम मंगलारती होते हैं तो क्या भगवान जो मंदिर में है अपने घर में ही हम करेंगे, तो ठीक है घर में करेंगे लेकिन वो एकाग्रता वो नहीं होगी। जो भक्तों के समाज में अब भगवान के मंदिर में होते हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी अपने ऑफिस में नहीं भक्ति करके गए क्षीर सागर, तो वहां जाकर के क्या किए, वहां जाकर के तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम दशा कवि पुरुषम पुरुष सुख देना उत्कृष्ट समाज है। वहां जाकर के ब्रह्मा जी और समस्त देवता सब पुरुष सूक्त के द्वारा वेदों में जो स्तुति है भगवान के विषय में उस स्तुति को गाने लगे, गाते गाते ब्रह्मा जी को समाधि लगे। तो क्षीर सागर के तट पर जाकर के ब्रह्मा जी कीर्तन करने लगे, जैसे हम लोग भगवान के स्तुति गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको परंपरा से गाते हैं भगवान के सामने, विशेष गोविंद भगवान के विषय में वैदिक ग्रंथों में उचित वर्णन है सर परफेक्ट, ऐसा नहीं मन में कल्पना नहीं करना चाहिए कि भगवान का यह गुणगान है या ऐसा करना, अपने से कल्पना नहीं करना है, पहले से सब शोभित है, भगवान को कैसे प्रणाम करना, कैसे कीर्तन करना, जैसे इस युग के लिए सबसे महान कीर्तन है
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
तो वही करना चाहिए जो हमारे वेद शास्त्रों में प्रमाणित चीज है, पहले से दिया गया है। तो ब्रह्मा जी भगवान शिव और सभी देवता क्षीर सागर के तट पर जा करके भगवान के स्तुति करने लगे, कोई अपनी कविता नहीं बनाए, पूरे सूत्र द्वारा जो पहले से एक स्तंत्र है उसे पुरुष सूत्र, पुरुष सूक्त से पुरुष की स्तुति की, तो क्षीर सागर के तट पर जा करके ऐसे ही कोई कल्पना नहीं करता कि भगवान कहीं हवा है या भूत बैठे कहाँ रहते हैं, पुरुष की स्तुति कर रहे थे भगवान भी, पुरुष का निश्चित वर्णन है कि कैसे हाथ हैं पैर हैं कैसे कपड़ा पहनना है कैसा मुकुट आभूषण इत्यादि है, पर पुरुष सूक्त के बिना स्तुति कर रहे हैं। तो इतनी एकाग्रता से स्थिति किए कृष्ण किए ब्रह्मा जी का मन समाधिस्थ हो गया, गिरम समाधौ गगने समेता तो भगवान दुख दूर करेंगे। भगवत विराम सही शुद्ध लगता तुम सब लोग अपने अपने अंशों से जदकुल में जन्म लो, सभी देवताओं को भगवान ने आज्ञा दिया है। शिरोधक साहब भगवान की आज्ञा हुई है तुम लोग जदुवंश में जन्म लो और दुख जन्म देता और कुछ कुलवंश में कुछ और जन्म लो। सभी देवता जदुवंश में जन्म लो, जदसु कुछ जन्म लेता जदों में जन्म ग्रहण करो। कब तक करेंगे? जब तक भगवान पृथ्वी का भार दूर करते हुए पृथ्वी पर विश्राम करेंगे तब तक, तब तक तुम लोग जदवंश में जन्म लो। जब तक परम पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे, चरित गुरु बहुत सुंदर बात, भगवान पृथ्वी पर आएंगे, चरित गुरु पृथ्वी पर विचरण करेंगे। और दूसरी बात सुनाया, अब ध्यान से सुनो, वासुदेव का अनंत सहस्र वचना स्वरा अग्रतो भविता देव हरे प्रिय चिकित्सा। और जो वासुदेव के कला है अनंत की कला भी अनंत होता है, वासुदेव कला अनंत जिनका नाम अनंत है। सहस्र वचना जो हजार मुख वाले हैं, सहस्र बदला स्वरा स्वयं नहीं बरा देते, जो अपने हैं प्रभु के साथ ही विराजमान रहते हैं, श्री कृष्ण के साथ ही रहते हैं, वे सहस्र बदल अनंत शेष अग्रतो भविता देव, वे देव सबके पूज्य अग्रतो भविता भगवान से आगे जन्म लेंगे, अग्रत बनेंगे। इसलिए हरे प्रिय चिकित्सा हरि का कृष्ण का प्रिय करने के, कृष्ण का प्रिय करने के लिए कृष्ण के बड़े भाई बनेंगे, ये भगवान शिरोधक साहिब ने कहा है। ब्रह्मा जी इस बात को सुना रहे हैं, भगवान की बात को डायरेक्ट जैसा वो नहीं सुन पाए तो ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। भगवान आएंगे पृथ्वी पर अवतार लेंगे, लेकिन भगवान से पहले भगवान के अंश अनंत आएंगे, भगवान के बड़े भाई बनकर। क्या उद्देश्य है बड़ा भाई बनने का? हरे प्रिय चिकित्सा श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए। श्री कृष्ण को यही पसंद है कि मतलब बड़ा घर बने बलराम जी। हरे प्रिय चिकित्सा हरि का प्रिय करने के लिए कृष्ण का प्रिय करने के लिए बड़े भाई के रूप में श्री अनंत आए। श्री कृष्ण को यह बहुत प्रिय बात है कि कोई उनसे बड़ा हो और उनको कंट्रोल करे। श्री बलराम जी बड़ा भाई से बने कि कृष्ण को कंट्रोल करेंगे। तो कृष्ण बड़े और श्रृंखल है ना, व्यवहार है तो इन पर कंट्रोल रखने के लिए बड़ा भाई बने। जब छोटे भाई के रूप में आए थे पहले लक्ष्मण बनकर भगवान राम की लीला रघुनाथ की लीला में, तो भगवान श्री राम बड़ा दबाव रखते थे बचपन में। जब 14 वर्ष के लिए वन जाना हुआ तो लक्ष्मण जी विरोध कर रहे थे, नहीं आप वन में नहीं जाएंगे, राज आपका है और कहिए तो मैं दशरथ को मार देता हूँ। आपका राज तिलक होगा, आप राज्य के अधिकारी। भगवान को अधिक माता ने कहा है तो बैठ माता वो कामी कहीं कहीं के फेर में पड़ करके आपको बने मिलना है तो मैं उसको मार देता हूँ दशरथ और आपका राज्य तिलक करता। लेकिन भगवान में काम नहीं है, पुत्र का धर्म है तो कर जाता है। चले ही न सारे अयोध्यावासी रोते रह गए, गुलाम करते रह गए और फिर भी सबको दुखी कर दे। भगवान चले गए, पिताजी भी मर गए, माताएं सब इतना हो गई, बहुत दुख छा गया। फिर भी भगवान ने जबरदस्ती किया तो चले गए। लक्ष्मण जी विचार कर रहे थे और वो अनंत विचार कर रहे थे कि छोटा भाई बन करके अभिनता स्वीकार करना ठीक नहीं, बुरा भाई बन करके कंट्रोल कर रहे हैं। तो वास्तव में भगवान कृष्ण का प्रिय करने के लिए ही मैं अगर तो भूलता देखो तो आगे जन्म नहीं। कभी कभी इस वृंदावन में गोचारण के लिए कृष्ण जाते थे तो जमुना जी में कूद पड़ते थे, डूबने से बच जाते थे, मरने से बच जाते थे। तो माँ जशोदा करती थी बलराम से पूछती थी आज कृष्ण क्या क्या किया, कहते थे मैं कल नहीं गया था, सुना कि जमुना में जानता उठता रहता है, स्नान करता रहता है, तुम नहीं गया था, मैं एक काम से रह गया था घर पर, नहीं तुम जाया करो, तुम साथ में रहोगे तो ठीक रहेगा। तो बलराम भी जाते थे वन में गाय चराने और कृष्ण की कोई उत्पतन व्यवहार को देख कर जानते थे। है कृष्ण इधर चलो इधर चलो, और गोवर्धन की गुफा में प्रवेश मत करो, उसमें भालू रहता है, सांप चलो इधर आओ, जबरदस्ती खींच लेते थे, संकर्षण नहीं कृष्ण को जबरदस्ती पकड़ लेते। काली नाग से सांप से निपट गए थे इसलिए कि बलराम जी उस दिन नहीं आए थे। सब लोग बात में डांट रहे थे तुम कहाँ रह गया, क्यों नहीं गया। बलराम जी उस दिन गए होते तो काली के साथ कृष्ण की लीला नहीं हुई होती। प्रकार अनेक लीलाओं में श्री बलराम जी कृष्ण का प्रिय करते थे। इसके लिए ही वे बड़े भगवान हैं। ऐसे द्वारका में जाने पर ऐसा लगता है कभी कभी कि बलराम जी और कृष्ण में मनमुटाव चल रहा है। वास्तविकता यह बात नहीं है। वास्तविक यह है कि श्री कृष्ण और बलराम एक ही है। वास्तविक कहने के लिए दो शरीर है, लेकिन वो एक है, एक विचार है, सब कुछ एक है। सार द्वितीय है श्री बलराम। श्री बलराम जी भगवान कृष्ण के दूसरे रूप है, कोई भेद नहीं है। परंतु लीला में कुछ भेद है, और लीला में भेद है तो उससे कुछ मनमुटाव भी लगता है कि मन मिल नहीं रहा है। जैसे महाभारत का युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध होना निश्चित हो गया, तो श्री कृष्ण ने कहा कि हम जा रहे हैं हस्तिनापुर, तो बलराम जी ने सुना कि तो अपने संबंधियों में युद्ध हो रहा है, तुम किसी तरफ मत रहो, किसी पक्ष में मत रहो, देखो मैं स्वयं हूं, मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कि हाँ, मैं भी हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं भी किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन मैं सहायता करूंगा अर्जुन की। तो श्री बलराम ने कहा नहीं नहीं, वो भी मत करो, एकदम तटस्थ रहो। भगवान ने कहा कि नहीं, हमें तो किसी भी स्थिति में अर्जुन का त्याग नहीं करना। तब बलराम जी थोड़े बिगड़ गए, तो ठीक है, तो जब तक युद्ध होगा मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हूँ, और हमें पर कुछ न कुछ ब्लेम होगा कि कहीं सहायता नहीं किया, नहीं किया। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा में चल दिए। भगवान कृष्ण रोक रहे थे कि नहीं रुक जाइए, नहीं हम जाएंगे। तो तीर्थ यात्रा प्रारंभ किए, मैंने साथ में शरण में गए। पहली बार तो वहां एक कथा कहने वाले साधु को मार दिए, एक सीख उठा करके सूत गोस्वामी के पिताजी को मार दिए। बाद में भगवान बहुत गर्व किया, नहीं बोलते आप तो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, युद्ध में भाग नहीं लेंगे, और जाकर के महात्मा को मार दिए। जिस दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो रहा था, उस दिन भी बलराम जी पहुंच गए तीर्थ यात्रा पूरा करके। तो श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ये कहां से आ गए? चुपचाप सब लोग देखते लगे क्या। तो भीम और दुर्योधन युद्ध हो रहा था, दुर्योधन की जान पर वार किया बलराम जी ने, भीम ने उसकी जानें टूट गई, वो असहाय होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और श्री बलराम जी कहे कि ये अधर्म हो रहा है, इस तरह से युद्ध नहीं किया जाता है, क्यों जान में मारा जा रहा है, गदा को सिर पर या इधर मारना चाहिए। तो बलराम जी को बलराम जी मारने के लिए भीम को हाथ उठाकर उछल दिए। तो भगवान कृष्ण पर्यटन मनाए किसी तरह से, और बाद में व्यर्थ करने लगे भगवान की, आप क्षत्रिय होकर के युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे तीर्थ यात्रा में तीर्थ में तीर्थवासी साधु को मारते चले। जब पांडव लोग वनवास पूरा करके विराट नगर में रह रहे थे, एक मीटिंग हुई द्वारका के कुछ लोगों के साथ पांडवों की, भगवान कृष्ण बलराम जी और सात्यकी सब गए थे। तो विचार होने लगा क्या क्या किया जाए। तो भीमसेन कह रहे थे कि अब तो हम लोगों ने सत पूरा कर दिया वनवास का, अब हमारे राज मिलना चाहिए, तो किस तरह से क्या किया जाए। तो श्री बलराम जी चाहते थे कि कोई खड़ा न हो, तो कहे कि खड़ा ठीक नहीं है, युद्ध करना ठीक नहीं है, कोई जाए उनको समझाने के लिए। अभी पांडव लोग वनवास की शर्त पूरा कर चुके हैं, इनको आधा राज दे दिया जाए। तो भगवान कृष्ण कहा ठीक है, तो अब जाकर समझाइए। आपका बड़ा स्नेह है दुर्योधन पर, तो आपके समझाने से लोग मान जाएंगे, आप जाइए। पर श्री बलराम जी का भाषण है महाभारत में, कहते हैं नहीं, किस देश में किस काल में क्या बोलना है इसको जितना तुम जानते हो मैं नहीं जानता, तुम ठीक बोलोगे, तुम संधि कराने जाओ। हमको जानते हो कि मैं थोड़ा सा अगर प्रदान हो जाए कुछ तो गुस्सा चढ़ जाएगा, इसके पहले हस्तना को उखाड़ लिया था, अगर वे कुछ गलत करें खड़ा बोलेंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन तुम समुद्र की तरह गंभीर हो, इसलिए तुम जाओ, तुम समझाने में कुशल हो, तुम ही जाओ। तो भगवान समझ बन करके गए, बलराम जब गए होते तो सबको मार देते लोग। ऐसे कई कई जिलाए हैं जिनमें से लगता है कृष्ण के साथ इनका मेल नहीं है, लेकिन वो कृष्ण स्वरूप हैं, कृष्ण से कुछ भी अलग नहीं करते हैं, जो कुछ करते हैं हरे प्रिय चिकित्सा है, कृष्ण के सुख के लिए ही करते हैं। विश्व माया भगवती दया सम्मोहित जगत आदिष्टा पूर्णाचना कार्या से संभव। और ब्रह्मा जी ने सुनाया भगवान की बात, शिरोत्साही प्रभु की बात, कि भगवान की जो माया है, योग माया, वो भगवान के आदेश से प्रकट हो रही किसी का कार्यार्थ किसी खास काम के लिए। कौन से आदि अश्रों को मोहित करने के लिए और नंद बाबा आदि को मोहित करने के लिए, भगवान की वो स्वरूप शक्ति है, लेकिन दोनों पर अधिकार करती है। योग माया के रूप में वो नंद महाराज यशोदा रानी को मोहित करेगी, कोबो को, और महामाया के रूप में कंस और बछड़ा के अन्य अश्रों को मोहित करेगी। इस कार्य के लिए प्रकट होगी। इत्यादि मर्गना प्रजापति पति विभु आश्वास मंगल भी स्वधाम पर ब्रह्मा जी इस तरह से देवताओं को आदेश दिए समझाए और पृथ्वी को आश्वासन दिए। जो गौ रूप में पृथ्वी थी उसको आश्वासन दिए, तुम चिंता मत करो, तुम तो धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान का अवतार होगा, तुम्हारे ऊपर चरण विन्यास करेंगे, तुम वैकुंठ से भी अधिक प्रशंसनीय बनोगे, खेद मत करो। इस तरह पृथ्वी को समझा करके, सांत्वना दे करके, देवताओं को आदेश दे करके, तब ब्रह्मा जी अपने परम धाम ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जी का घर सबसे अधिक सुंदर और समृद्ध है, इसीलिए उसे परम धाम कहा गया। सबसे श्रेष्ठ लोक में ब्रह्मा जी चले गए। भगवान के अवतार के विषय में प्रस्तावना है, सब कुछ सेट हो गया, भगवान कब अवतार लेंगे, कहाँ पर। वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषा पर पहले समझाया, परम पुरुष स्वयं भगवान लोकाधिपति वसुदेव जी के घर में जन्म लेंगे। वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषा पर साक्षात भगवान मतलब स्वयं भगवान परम पुरुष जन्म लेंगे। तो भगवान का प्रिय करने के लिए और भगवान की प्रियाओं का प्रिय करने के लिए देवताओं की स्त्रियां जन्म लेंगे। भगवान गर्भक सहित देवताओं की स्त्रियां भी यहाँ आराम नहीं करेंगी है अपने अपने घर में, सब जन्म ग्रहण कर रहे हैं और भगवान की प्रियाओं की सेवा करने देंगे। राधा रानी ललिता विशाखा आदि ब्रज में और मथुरा में द्वारका में भगवान की पत्नियों की सेवा करने के लिए ये सब अवतार हैं। वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषा पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्ति सुदस्त्रिया। तत्प्रियार्थ उनकी प्रिया के लिए या उनका प्रिय करने के लिए देवताओं की स्त्रियां जन्म लें। देवता लोग सबको कहे कि आप लोग विध्वंस में जन्म लीजिए और आपकी पत्नियां भगवान की प्रियाओं की सेवा के लिए जन्म लें। एक बार एक व्यक्ति कथा पढ़ रहे थे तो कहा कि सब देवता जाएंगे दधवंश में जन्म लेने तो ये स्त्रियां अपनी ठली क्या बैठी करेंगे स्वर्ग में, ये भी जन्म लेकिन भाग्य होगा भगवान की प्रियाओं की सेवा करिए, रुक्मणी जी की सेवा करिए, सत्यभामा की सेवा करिए। 16,000 पत्नियां हुई तो कितनी दासियां होंगी, और उस ब्रज में भी राधा रानी भगवान की प्रिया है तो उनकी सेवा के लिए सभी देवताओं की स्त्रियां जन्म लेंगी। भगवान का जो अवतार होता है तो परफेक्ट प्लानिंग होता है, पूरा कौन कहाँ पर प्रकट हो रहा है, कौन कहाँ पर प्रकट हो रहा है, कौन कहाँ। इस प्रकार भगवान का अवतार होता है। यहाँ किसी को क्या पता होता है कि मैं कहाँ जन्म लूंगा, इसके बाद कहाँ जन्म लूंगा, फिर कहाँ सुअर में जन्म होगा, कुत्ता में जन्म होगा कि बानर में जन्म होगा, कहाँ कोई पता नहीं। फिर शरीर मिल गया कहते हैं हम भगवान भगवान है, पहले कहा किसी का कुछ पता नहीं, कब मरेंगे कहाँ मरेंगे। दूसरे के जन्म और मृत्यु का तो पता लगाना बड़ा कठिन है, अपना भी पता नहीं। भगवान का सब कुछ परफेक्ट होता है, भगवान का तो अवतार होगा अष्टमी को हुआ अग्रसर भविता, उसके पहले श्री भगवान जी का अब तो होने ही वाला है। तो क्षीर सागर से कथा और मथुरा में आ जाएगी। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, अब कल से कथा मथुरा में होगी। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, धन्यवाद।